एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार संज्ञा का। आज के इस अंक के लिए हमने चुना है साल 1932 की फिल्म माया मछिंद्र का गीत छोड़ आकाश के सितारे जमी पर आए। गोविंद राम टेम्बे की आवाज, कुमार के बोल और गोविंद राम टेम्बे का ही संगीत। सवाक फिल्मों के दौर में शुरू शुरू में बनने वाली इस फिल्म के तमाम पहलुओं के बारे में जाने। गोविंद राम टेम्बे के कलात्मक सफर की दास्तान भी है आज के इस अंक में। साथ ही प्रस्तुत है गीत से संबंधित कुछ और बातें। ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं श्री शर्मा।
भारतीय सिनेमा के शुरुआती अग्रणी फिल्मकारों में एक थे वी शांताराव, जिनकी प्रभात टॉकीज ने सवाक फिल्मों की नई तकनीकों को उस शुरुआती दौर में ही अपना लिया था और सवाक फिल्मों की शुरुआत के दूसरे ही साल यानी 1932 में लेकर आए सुपरहिट फिल्म माया मछिंद्र। उस जमाने में इस फिल्म ने काफी सनसनी पैदा की थी क्योंकि इसमें नई नई तकनीकों यानी स्पेशल इफेक्ट्स के प्रयोग में लाए जाने की बातें चल पड़ी थी जो उस समय के हिसाब से अकल्पनीय थी। वैसे उन दिनों स्पेशल इफेक्ट्स नहीं बल्कि ट्रिक सीन्स कहा जाता था। माया मच्छिंदर के मुख्य कलाकार थे गोविंद राव टेम्बे, दुर्गा खोटे, मास्टर विनायक, बाबूराव पिंडरकर, लीला चंद्रगिरी, निम्बलकर, हीराबाई और अन्य कलाकार। फिल्म के केंद्रीय चरित्र मच्छिंदर नाथ की भूमिका में अभिनय किया गोविंद राव टेम्बे ने, जो इस फिल्म के संगीतकार भी थे। वो पार्श्व गायन का दौर नहीं था इसलिए फिल्म में अपने ऊपर फिल्माए गाने उन्होंने स्वयं ही गाए। 1931 में आलमारा और अन्य जो फिल्में बनी थी उनके गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जारी नहीं हुए थे। ये सिलसिला 1932 में शुरू हुआ था। फिल्म माया मच्छिंद्र का गोविंद राव टेम्बे का गाया छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर जारी हुआ। रिकॉर्ड लेबल पर गीतकार का नाम मुद्रित नहीं हुआ था। हरमिंदर सिंह हमराज संकलित हिंदी फिल्म गीत कोश के अनुसार इस गीत के गीतकार थे कुमार, लेकिन न उनका पूरा नाम किसी को पता चल सका और न ही उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी मिल सकी। हाँ, ये जरूर है कि 40 के दशक में कुमार नाम से गीतकार के लिखे गीत झनकार और जीवन यात्रा जैसे फिल्मों में सुनने को मिले। खैर, गोविंद राव टेम्बे की आवाज में आज का ये गीत आश्चर्यजनक रूप में और तुलनात्मक रूप से सुसंरक्षित अवस्था में रहा है और अब तो ये डिजिटलाइज हो जाने की वजह से सदा के लिए सुरक्षित हो चुका है। इस गीत को सुनते हुए गोविंद राव टेम्बे की गायन क्षमता और प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। गुजरे दौर के भूले बिसरे कलाकारों के बारे में विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करना आसान कार्य नहीं है। आज हम फिल्म और फिल्म संगीत इतिहासकार श्री अरुण कुमार देशमुख के लिखे एक लेख से जानकारी लेकर आपको गोविंद राव टेम्बे और माया मच्छिंद्र फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। गोविंद राव टेम्बे का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 5 जून 1881 को हुआ था। उस समय कोल्हापुर कला और संस्कृति का गढ़ हुआ करता था। एक से एक गुणे कलाकारों का संगम हुआ करता था कोल्हापुर। बचपन से ही गोविंद राव बहुत सुरी लगाते थे। ईश्वर प्रदत्त इस गुण को उन्होंने निखारना शुरू किया अभ्यास से। छुटपन में ही वे एक बेहतरीन गायक और हारमोनियम वादक बन गए। कोल्हापुर में उनका काफी नाम हो गया। गायन और वादन ये दोनों कलाएं ही उनके बहुत काम आई जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के बारे में सोचा। फिल्म जगत में पदार्पण से पहले गोविंद राव टेम्बे ने वकालत की एक बुनियादी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इस योग्यता के आधार पर कुछ समय के लिए उन्होंने क्लर्क, वकील और सर्कस प्रबंधक के रूप में भी काम किया, लेकिन एक कला के पुजारी का मन भला ऐसे नीरस कामों में कैसे रमता। बस फिर क्या था, गोविंद राव एक नाटक मंडली में शामिल हो गए। अपने संगीत की समझ को और अधिक बढ़ाने और गायकी की बारीकियों को और करीब से सीखने, परखने और तराशने के लिए गोविंद राव टेम्बे ने भास्कर बुआ बखाले और उस्ताद अल्लादिया खान से कुछ समय तक संगीत सीखा। उन्होंने बाल गंधर्व नाटक मंडली में भी काम किया। इस पूरी यात्रा में उन्होंने अभिनय, संगीत, गायन, वादन और लेखन के साथ साथ प्रोडक्शन के विभिन्न पहलुओं को भी करीब से देखा और जाना। बाद में जब उन्होंने अपनी खुद की शिवराज नाटक मंडली का निर्माण किया तो ये अनुभव उनके बहुत काम आए, लेकिन अफसोस कि उनकी ये मंडली जल्दी बंद हो गई। और तब गोविंद राव टेम्बे जुड़े प्रभात फिल्म कंपनी से। उन दिनों सभी फिल्म निर्माण कंपनियों को उन्हीं के जैसे सर्वगुण संपन्न कलाकारों की आवश्यकता रहती थी, इसलिए बिना किसी संघर्ष के ही उन्हें प्रभात में एंट्री मिल गई। वहां पर गोविंद राव ने लेखक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और नाट्यकार की भूमिकाएं निभाई। गोविंद राव टेम्बे का संगीत मराठी नाट्य संगीत से काफी प्रभावित था। जहां एक तरफ इस पहलू ने उन्हें शुरुआती लोकप्रियता दिलाई, वहीं दूसरी तरफ नुकसान ये हुआ कि वे फिल्म जगत में लंबी पारी नहीं खेल सके, क्योंकि फिल्मी गीतों का एक अपना अलग स्टाइल विकसित हो रहा था। प्रभात की 1932 की तीन फिल्मों में उनका संगीत, गायन और अभिनय था। माया मच्छिंद्र का उल्लेख तो हम कर ही चुके हैं। अन्य दो फिल्में हैं अयोध्या का राजा, जो मराठी में भी बनी, अयोध्या चराजा शीर्षक से, और दूसरी फिल्म है जलती निशानी। ये तीनों ही फिल्में सफल रही और इनके गीत संगीत की लोकप्रियता की वजह से गोविंद राव टेम्बे का काफी नाम हुआ। इसके बाद उन्होंने कलकत्ते का रुख किया। वहां उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ फिल्म सीता में अभिनय किया। दोस्तों आपको बता दें कि ये न्यू थिएटर्स की फिल्म नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फिल्म थी, जहां पर के सी डे संगीतकार हुआ करते थे। फिल्म सीता में भी के सी डे ही संगीतकार थे और गीत लिखे थे पंडित नरोत्तम व्यास ने। देवकी बोस निर्देशित इस फिल्म को उस वर्ष वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। गोविंद राव टेम्बे के संगीत से सजी कुछ अन्य फिल्मों के नाम है सैरंद्री, उषा, राजमुकुट, असीरे हवस, विश्वमन, प्रतिभा, साथी, वासंती और नंदकुमार। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, गोविंद राव टेम्बे कभी भी नाट्य संगीत और फिल्म संगीत के बीच अंतर नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि उन्हें जल्द ही हटा दिया गया। फिल्मों में उन्हें मौके मिलने पूरी तरह से बंद हो गए। तब वे मराठी नाट्य जगत में वापस चले गए। उनके जीवन का अंतिम समय दिल्ली में बीता। दोस्तों आइए अब माया मच्छिंद्र फिल्म के बारे में बात की जाए। अयोध्या का राजा और जलती निशानी के बाद ये प्रभात की तीसरी सवाक फिल्म थी। फिल्म को निर्देशित किया वी शांताराम ने। फिल्म की कहानी नवनाथ पोथी नामक कहानी संग्रह से चुनी हुई एक कहानी पर आधारित थी। वी शांताराम ने जर्मनी का दौरा किया था और वहां जाकर उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की नई नई तकनीकें सीखी थी। वापस लौटकर उन्होंने उस ज्ञान का पूरा उपयोग माया मच्छिंद्र में किया, क्योंकि ये उनकी वापसी के बाद पहली फिल्म थी। पौराणिक विषय वस्तु के फिल्म होने की वजह से तकनीकी कर्तव्य दिखाने की गुंजाइश थी फिल्म में। फिल्म के औपचारिक सिनेमेटोग्राफर थे प्रभात कंपनी के ही एक अन्य संस्थापक और मालिक केशव राव ढैबर। हिंदू पुराण के अनुसार इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान विष्णु के 9 अवतारों यानी नवनाथों में प्रथम थे मच्छिंद्रनाथ। अन्य 8 अवतारों के नाम हैं गोरखनाथ, जलंधरनाथ, कनीफनाथ, गहनीनाथ, भर्तृनाथ, रेवणनाथ, चरपटीनाथ और नागनाथ। उपनिषदों तथा भागवत पुराण में नाथ संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। माया मच्छिंद्र की कहानी कुछ यूं थी। सरस्वती देवी नामक धनी महिला मच्छिंद्रनाथ के पास जाती है और उनका आशीर्वाद मांगती है। आशीर्वाद के रूप में जब मच्छिंद्रनाथ उसे अपना जादुई भस्म देते हैं तो वो उससे खुश नहीं होती और घर लौट कर वो भस्म एक खाली कूड़ेदान में डाल देती है। समय आने पर उस कूड़ेदान में एक शिशु का जन्म होता है। रक्षा भस्म से उत्पन्न उस बालक का नाम रखा गया गोरखनाथ। मास्टर विनायक ने फिल्म में ये भूमिका निभाई थी। 12 वर्ष बाद मच्छिंद्रनाथ का आगमन होता है। वे हुंकार देते हैं, चलो गोरख, मच्छिंद्र आया, और वो 12 वर्षीय गोरख को अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जब उसे ज्ञान देने का समय आ जाता है तब मच्छिंद्रनाथ उसे अपना ज्ञान सौंप कर राज्य की ओर निकल पड़ते हैं रानी तिलोत्मा को परिवर्तित करने का उद्देश्य लेकर। तिलोत्मा का किरदार दुर्गा खोटे ने निभाया था। त्रिराज्य में पहुंचकर मच्छिंद्रनाथ तिलोत्मा के सौंदर्य को देखकर उससे प्रेम कर बैठते हैं और अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को भूलकर उनके साथ विवाह बंधन में बन जाते हैं। जब गोरख को इस बात का पता चलता है तब वो अपने गुरु को वापस लाने का निर्णय करता है। नर्तकी कलिंगा की सहायता से वो राज्य में प्रवेश करता है। सीधे अपने गुरु से जा मिलने के बजाय वो वसंतोत्सव के शुरू होने की प्रतीक्षा करता है। तत्पश्चात वो स्त्री वेश धारण कर कलिंगा के साथ दरबार में प्रवेश करता है। जब गोरखनाथ के मृदंग बजाने पर कलिंगा नृत्य करने लगती है तो एक अजीब समा बंधने लगता है और अचानक जोर से गोरखनाथ बोल उठते हैं, चलो मच्छिंद्र, गोरख आया। ये सुनते ही मच्छिंद्रनाथ के होश ठिकाने लग जाते हैं। जब गुरु शिष्य वहां से चले जाने के लिए तैयार होते हैं तब रानी तिलोत्मा दोनों को कैद कर लेती है और गोरख का सर धड़ से अलग कर देती है। सर के दूर जाकर गिरने का दृश्य बहुत भयानक था, जिसने उन दिनों सीधे सरल दर्शकों को बहुत भयभीत किया। कुछ ही समय में मच्छिंद्रनाथ कटे सिर को गोरख के निष्प्राण धड़ में पुनः स्थापित कर देते हैं। गोरख के होश आने के बाद मच्छिंद्रनाथ उसे कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ है कुछ भी वास्तविक नहीं था, बल्कि सब उनका माया जाल था, और ये सब उन्होंने किया गोरखनाथ को सत्य के ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। यहाँ आकर फिल्म पूरी होती है, लेकिन दर्शकों के दिलों में इसका प्रभाव सिनेमा घरों से बाहर निकल जाने के बाद भी देर तक रहता था। उन दिनों फिल्म के ट्रिक सीन्स शानदार थे और लोग बार बार इन दृश्यों को देखने के लिए थिएटर जाते थे। चलो मच्छिंद्र गोरख आया, ये संवाद भी काफी लोकप्रिय हुआ था और लोगों की जबान पर चढ़ गया था। फिल्म माया मच्छिंद्र में कुल 17 गीत थे। जी हाँ, सवाक फिल्मों के उन शुरुआती चंद सालों में गीतों की संख्या अधिक हुआ करती थी, लेकिन गीतों की अवधि 2.5 से 3 मिनटों तक ही होती थी। कहानी में जहाँ भी संवाद के बदले गीत की गुंजाइश हो वहाँ गीत डाल दिया जाता था, यानी उन दिनों फिल्मों पर नाट्यकला का बहुत अधिक प्रभाव हुआ करता था। छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए गीत में मच्छिंद्रनाथ रानी तिलोत्मा और उनकी स्त्री सेना की नारियों के सौंदर्य को संबोधित कर रहे हैं। गीत का संपूर्ण मुखड़ा है, छोड़ आकाश को सितारे जमी पर आए, देखिए स्वर्ग की क्या खैर खबर लाए। गीत में केवल एक ही अंतरा है, या निरख तेरा अति सुंदर मुखड़ा, तू जलकर शशि तर जाए, खंड लाखों उसी के मानो जमी पर आए। उन दिनों ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के लिए हर गीत की अवधि 3 मिनट से थोड़ी ऊपर हुआ करती थी, इसलिए अगर गीत में बोल कम हो तो गीत को अवधि पूरी करने के लिए खींचा जाता था, और ऐसा अक्सर गीत में अतिरिक्त अलाप, सरगम, ताल आदि जोड़कर किया जाता था। प्रस्तुत गीत में गोविंद राव टेम्बे के मनमोहक आलाप है, जो उनकी उच्च स्तरीय शास्त्रीय गायकी की पहचान कराते हैं।
तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से संबंधित रोचक बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।